ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ.
ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರು ಅಪ್ ಸಬ್ ವೈಷ್ಣವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚಾಹತಾ ಹೂ ಇಸ್ ಸೇವಾ ಕೆ ಲಿಯೇ. ಹಮೇ ಜೊ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಡ ರೇ ಯೇ ಬಹುತ್ ಹಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹೇ ಹಮ್ ಸಬ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ದೋ ಕಾರಣೋ ಸೇ. ಏಕ್ ತೋ ಯೇ ವೋ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇ ಜೋ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೆ ಪ್ರಕಟ ಲೀಲಾ ಕೆ ಜೋ ಆಖರಿ ದಿನೋ ಮೇ ಜೊ ಅನುವಾದ ಕಿಯಾ ಹುವಾ ಯೇ ಆಖರಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕೆ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ ಕಾ 13ವಾ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾ ಅನುವಾದ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ 14 ನವಂಬರ್ 1977 ಕೋ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಕಾ ತಿರೋಭಾವ ಹುವಾ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇತನೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇ ಔರ್ ಇತನೆ ಸುಂದರ ಹೇ ಕಿಸೆ ಪತಾ ಚಲತಾ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಹೋತೆ ಹೇ ವೋ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೇ ಪ್ರಭಾವಿತ ನೀ ಹೋತೆ. ಹಾಲಂಕಿ ಶರೀರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರೂಪ ಸೇ ಜೀರ್ಣ ಹೋತಾ ಹೇ, ಉನ್ಕಿ ಉಮ್ರ ಕರೀಬ 80 ವರ್ಷ ಥಿ ಉಸ್ ಸಮಯ. ಔರ್ ಆಪ್ ಜಾನತೆ ಹೇ ಕಿ ಜಬ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಸಮಯ ಆತಾ ಹೇ ತ ಶರೀರ ಮೇ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಪೀಡಾ ಹೋತಿ ಹೇ, ದರ್ದ ಹೋತಾ ಹೇ. ಔರ್ ಶರೀರ ಕೆ ಜೋ ಸಬ್ ಅಂಗ ಹೇ ವೋ ಭಿ ಠೀಕ್ ಸೇ ಸಂಯೋಗ ನೀ ದೇತೆ. ಲೇಕಿನ್ ಫಿರ್ ಭಿ ಜೋ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಹೋತೆ ಹೇ ಶಿಲ ಜೋ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಹೋತೆ ಹೇ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ತರಹ ವೋ ಸೇ ವಿಚಲಿತ ನಹೀ ಹೋತೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಕಾ ಏಕ ಫೇಮಸ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹೇ ಯೋರ್ ಎವರ್ ವೆಲ್ ವಿಶರ್, ಜಿನ್ಕಾ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹೇ ಉನ್ಕೆ ಜೀವನ ಕಾ ಜೋ ಉನ್ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗೌರ್ ನಿತಾಯ್ ಕಿ ಜಯ. ಏಕ ಫೇಮಸ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹೇ ಜಹಾಂ ಪರ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಪ್ನೆ ಆಖರಿ ದಿನೋ ಮೇ ಔರ್ ಭಕ್ತ ಉನ್ಕೊ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಉಠಾ ಕರ್ ಲೇ ಜಾ ರೇ ಭಗವಾನ್ ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಮಂದಿರ್ ಮೇ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಚರಣಾಮೃತ ಭಿ ಉನ್ಕೊ ಮುಂಹ ಮೇ ಅರ್ಪಣ ಕಿಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ. ಬಹುತ್ ಕಮಜೋರ್ ಅವಸ್ಥಾ ಹೇ. ಬಾದ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಕಮರೋ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಮಂದಿರ್ ಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಹಾಂ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಕಮರೆ ಹೇ ವಹಾಂ ಪರ್ ವೋ ಲೇಟೆ ಹೇ ಔರ್ ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಉನ್ಕೆ ಮುಂಹ ಕೆ ಪಾಸ್ ಡಿಕ್ಟಾಫೋನ್ ಲಗಾಯೆ ಹುವೆ ಹೇ ಔರ್ ವೋ ಅನುವಾದ ಕರ ರಹೇ ಹೈ. ಹಾಲಂಕಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಭೌತಿಕ ರೂಪ ಸೇ ಕಾಫಿ ನಾಜುಕ್ ಹೇ ಕಮಜೋರ್ ಹೇ, ಲೇಕಿನ್ ಉನ್ಕಾ ಮನ್ ಪೂರ್ಣತಃ ಶಾಂತ ಹೇ ಔರ್ ಉನ್ಕಾ ಮನ್ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಸೇ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಲಗಾ ಹುವಾ ಹೇ. ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪ ಸೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕೆ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ ಕಾ ಅನುವಾದ ಕರ ರಹೇ ಹೇ. ತೀ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಕಾ ಉದಾಹರಣ ಹೇ ಕಿ ಕೇಸೆ ಭಕ್ತ ಜೋ ಹೇ ಹರ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿ ರಖತಾ ಹೇ. ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಅರ್ಥ ಯೇ ನಹೀ ಹೇ ಕಿ ಭಕ್ತ ಕೋ ಕಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಕೋಯಿ ತಕಲೀಫ ನಹೀ ಹೋತಿ. ಭಕ್ತ ಶರೀರ ಎಸ ನೀ ಕಿ ಉಸ್ಕೋ ಕೋಯಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ನಹೀ ಹೋತಿ. ಉಸ್ಕೋ ಪತಾ ಹೀ ನಹೀ ಚಲತಾ ಕಿ ಸರ್ದಿ ಹೈ ಕಿ ಗರ್ಮಿ ಹೈ. ಉಸ್ಕೋ ಪತಾ ಹೀ ನಹೀ ಚಲತಾ ಕಿ ಮೇ ದರ್ದ ಹೋ ರಹಾ ಯಾ ನಹೀ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ವೋ ಕಿಸಿ ತರಹ ಕಾ ಕೋಯಿ ಪಾಗಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಹೀ ಹೋತಾ. ಉಸ್ಕೋ ಅನುಭವ ಹೋತಾ ಹೈ, ಉಸ್ಕೋ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಅನುಭವ ಹೋತಾ ಹೈ ದರ್ದ. ಲೇಕಿನ್ ವೋ ದೇಖತೆ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ನೇ ಭೇಜಾ ಹುವಾ ಹೈ, ಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಕೃಪಾ ಸೇ ಹೈ. ಔರ್ ಯೇ ದೇಖತೆ ಹೈ ಕಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಮೇ ಅಪ್ನಿ ಸೇವಾ ಕೋ ಬಂದ್ ನಹೀ ಕರು, ಮೇರಿ ಸೇವಾ ಚಾಲೂ ರೇ. ಅಹೇತುಕಿ ಅಪ್ರತಿಹತಾ, ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಹೇ ಅಹೇತುಕಿ ಅಪ್ರತಿಹತಾ. ಸವೈ ಪುಂಸಾನ್ ಪರೋ ಧರ್ಮ ಯತೋರ್ ಭಕ್ತಿ ರದೋಕ್ಷತೆ. ಅಹೇತುಕಿ ಭಕ್ತಿ, ಅಹೇತುಕಿ ಭಕ್ತಿ ಮತಲಬ್ ಕಿ ಕೋಯಿ ಹೇತು ನಹೀ, ಔರ್ ಅಪ್ರತಿಹತಾ ಮತಲಬ್ ಕೋಯಿ ರುಕಾವಟ್ ನಹೀ. ಭಕ್ತಿ ಜೊ ಹೇ ವಾ ಆತ್ಮಾ ಕೆ ಸ್ತರ್ ಸೇ ಕೀ ಜಾತಿ ಹೇ. ಇಸಿಲೇ ಶರೀರ ಸಂಯೋಗ ದೇ ಯಾ ನಹೀ ದೇ, ಭಕ್ತ ನಿಶ್ಚಿಂತ ರಹತಾ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಕೆ ಲಿಯೇ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಸ್ಥಿರ ಥೇ ಅಪ್ನೆ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮೇ, ಬಲ್ಕಿ ಶಿಷ್ಯೋಕೋ ಬತಾ ರಹೇ ಥೇ ಅಪ್ನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸೇ ಬತಾ ರಹೇ ಥೇ ಕಿ ಆಪ್ಕೋ ಭಿ ಯೇ ಸೀಖನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಡು ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯು, ಎಸಾ ಮತ್ ಸೋಚೇ ಕಿ ಆಪ್ಕೋ ಯೇ ನಹೀ ಹೋಗಾ. अभी आप में से अधिकांश लोग 20-30 वर्ष के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष के हैं, शायद कुछ होंगे जो 50-60 वर्ष के होंगे। लेकिन जब आप 20 वर्ष के होते हैं तो शरीर पूर्ण रूप से सहयोग देता है, ऐसा होता है जहाँ चाहे जा सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं और कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है शरीर की समस्या भी बढ़ने लगती है। तो व्यक्ति को हर समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरी मन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जब शरीर जीर्ण भी हो जाए, शरीर नष्ट भी होने लगे, तब भी मेरा मन कृष्ण में लगे रहे। और इसके लिए अभी से अभ्यास करना है। जैसे महाराज कुलशेखर अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं, हे कृष्ण मेरा मन राजहंस के समान है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मन इस समय आपके चरण कमलों में प्रवेश करे, जैसे कमल के डंडी में हंस प्रवेश करता है। प्राण प्राणाय समय कफवात पित्तैर कंठावरोधन स्मरणम कुतस्ते। जब प्राण जाने का समय आएगा तब कंठ अवरोध हो जाएगा, जब शरीर वात पित्त कफ सब इम्बैलेंस स्थिति में रहेगा उस समय आपका स्मरण करना मुश्किल होगा। इसलिए इस समय मैं आपका स्मरण करना चाहता, इस समय मैं देह त्याग करना चाहता आपकी स्मृति में। श्रील प्रभुपाद उन आखिरी दिनों में भक्तों को सिखा रहे थे कि ये मत सोचो कि आपको नहीं होगा ऐसे। हमारे लिए कोई कहे कल्पना, जैसे आप अगर 20 या 30 वर्ष के हैं और कहीं आपसे कोई कहे कि आप 70 वर्ष के होंगे तब क्या होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं कुछ दिन पहले वाराणसी गया था, जहाँ पर यहाँ पूना मंदिर के बहुत सारे भक्त प्रचार कर रहे हैं कॉलेजेस में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। आज से करीब 25 साल पहले मैं भी वहाँ पर पढ़ता था और मैं कुछ अपने पुराने प्रोफेसर से जो मुझे अविद्या सिखा रहे थे उनको मिलने के लिए गया था। जब मैं उनसे मिलने गया तो कि जो रूम सेम थे, नेम प्लेट सेम था, लेकिन जैसे अंदर प्रवेश किया उनके रूप को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि चेंजिंग डायरोमास का एक सीन दिख रहा है, जैसे भगवद गीता की फ़ोटो में देखते हैं, देही नो स्मीन यथा देहे कौमार, से वही व्यक्ति है और उसका रूप बिल्कुल बदल गया। तो वही प्रोफेसर हैं लेकिन बाल काले की जगह सफ़ेद हो गए हैं, शरीर में झुरियाँ पड़ गए हैं और काफ़ी शरीर पर प्रभाव पड़ गया। तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था और फिर उनको याद दिला रहा था, तब वो कह रहे थे कि वो आप बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप इस ओर मुड़े हो जीवन में। हम सब तो कपास तोल रहे हैं, कपास गिन रहे हैं, आप हीरे मोती गिन रहे हो, आपका सौभाग्य है। तो मैं सोच रहा था कि अब इस अवस्था में जब किसी की व्यक्ति 60-70 साल हो जाती है तो उस व्यक्ति को मोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उस व्यक्ति को उपदेश करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कोई पौधा है, जब पौधा छोटा है तो आप उसको अच्छी तरीके से दिशा दिखा सकते हो, उसका सिंचन कर सकते, लेकिन जब पौधा बहुत बड़ा हो जाता है तब आप उसको दिशा नहीं दिखा सकते। जैसे इस समय जब हमारी अवस्था अच्छी है अपने मन को कृष्ण में लगाने का प्रयास कर सकते, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है शरीर संयोग नहीं देता, बहुत मुश्किल हो जाता है, सुनना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस समय व्यक्ति को अपने मन को कृष्ण में लगाने का प्रयास करना चाहिए, विशेष करके नाम स्मरण के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद बिल्कुल स्थिर अवस्था में भागवत के अनुवाद कर रहे थे, ये एक कारण है। और दूसरी चीज़, ये अध्याय महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें दिखाता है ब्रह्मा विमोहन लीला से भगवान सिखा रहे हैं कि मेरी माया शक्ति का क्या प्रभाव है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक कोई जीवात्मा नहीं है जो कि माया से प्रभावित नहीं हो। ऑफकोर्स कई बार जब श्री मध्वाचार्य के संप्रदाय के दूसरे कुछ भक्त होते हैं, जब इस अध्याय का अनुवाद आता है तो वो ये अध्याय पढ़ते नहीं हैं, या बोलते हैं ये अध्याय को अपने भागवत में नहीं इंक्लूड करते। वो सोचते हैं कि ब्रह्मा जी हमारे फर्स्ट गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं हमारी परंपरा में, वो कैसे मोहित हो सकते हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी ये भी भगवान के हाथ में यंत्र की तरह कार्य करते हैं। कल जो श्लोक हमने पढ़ा उसके परपोर्ट में बताया गया है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जयचे नचाए से तैचे करे नित्य। कृष्ण ईश्वर हैं और कृष्ण जैसे नचाते हैं सब लोग नाचते हैं, ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी, इंद्र, कृष्ण इंद्र को बोलते हैं बहुत बरसात करो, पूरा बम्बई फ्लड हो जाता है। मैं सोच रहा था कि कई लोग कोशिश करते हैं बम्बई बंद करने के लिए, मोर्चा लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और हार्डली बहुत प्रयास करने पे बंद हो नहीं पाता, लोग पहुंच जाते हैं ऑफिसेज में। लेकिन भगवान कृष्ण जब चाहते हैं, इंद्र को बोलते हैं इंद्र बम्बई बंद तो पूरा बम्बई बंद हो जाता है। मेरे को रिपोर्ट्स मिले, मैं वहाँ से वृंदावन में था जब, 10:20 की ट्रेन पकड़नी थी, मैं 9 बजे निकला और ऑटो रिक्शा था, फास्ट जा रहा था, लेकिन जैसे ही निकला तो ज़ोर से बरसात होने लगी, और रास्ते में ऑटो रिक्शा बोले अब आगे नहीं जा सकता मैं, पूरा पानी पानी। तो नहीं, मुझे पहुँचना ही है, मुझे पहुँचना ही है बम्बई, किसी तरह से पहुँचना है। तो मैंने देखा एक टेम्पो था, टेम्पो का व्हील थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें बैठ गया, टेम्पो वाला आधे तक गया और वो भी बंद हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट थोड़े बाहर एक आप जानते हैं वृंदावन में बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर भी चलते हैं, एक ट्रैक्टर आ गया और उसमें 4 ब्रजवासी थे, बोले आ जाओ आ जाओ, तो सब सामान रख दिया। पूरा बरसात हो रही थी, गोवर्धन लीला सब स्मरण कर रहे थे और हम निकल पड़े, पूरा शरीर भीग रहा था लेकिन ट्रेन पकड़नी है। लेकिन रास्ते में थोड़ा रास्ता जाने के बाद वो ट्रैक्टर वाला बोला साहब अब आप यहाँ से आगे चले जाओ अपने आप, हमारा रास्ता इधर जा रहा है और आपका इधर है। तो मैं उतर गया, फिर एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, 10:15 बजे थे, 10 मिनट फुल स्पीड के, उसको बोला कि अब जल्दी ले चलो, बोले कितने भी पैसे कोई बात नहीं, और वो बहुत तेज़ी से ले गया और लोग स्टेशन पहुंच ही रहे थे, और रास्ते में एक पानी का ट्रैक्टर वाला आ गया, वो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, टैंक, हाँ टैंकर, टैंकर, टैंकर बहुत प्रेम से धीरे धीरे चला रहा था हम लोग इधर से प्रयास कर, उधर से प्रयास कर रहे थे, और देख रहे थे ट्रेन आ रही है, और दौड़ते दौड़ते वो बोला मैं आपके साथ आता हूँ, वो लगेज लेके आया, ब्रिज तक पहुँचे और ट्रेन चली गई। तो भगवान जो चाहते हैं वो होता है। और फिर मैं वहीं पर रहा और मैं सोच रहा था अभी क्या होगा, मैं बाहर खड़ा था जो रिजर्वेशन ऑफिस के पीछे, और वहाँ रिजर्वेशन क्लर्क, पता नहीं शायद वो भक्त सभी होते हैं ब्रजवासी, लेकिन इस्कॉन ड्यूटी जानता था चतुर्वेदी, और स्वयं बाहर आया, बोला आपको क्या चाहिए। मैंने बोला ऐसे ऐसे ट्रेन, कोई शाम की कोई ट्रेन हो तो उसमें रिजर्वेशन, बोला आप तुरंत आ जाओ मैं अभी देता हूँ टिकट। उसने टिकट बना के दे दिया कन्फर्म, और 8 घंटे ट्रेन स्टेशन पर ही बैठना था मुझे। तो उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठे और बड़ौदा तक पहुँचे, और समाचार मिला कि ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी, बचा हुआ पैसा आप कलेक्ट कर सकते हैं तो हम लोग बहुत विचलित हुए। फिर मैं प्रार्थना कर रहा था अभी क्या किया जाए, फिर एक सामने दूसरी ट्रेन आई जो कि सिकंदराबाद जा रही थी, और वो वाया पूना होके जा रही थी। तो मैं चलो बम्बई नहीं तो पूना पहुँच जाएंगे, और वहाँ पहुँचे तो बोले नहीं ये रूट भी बंद है, क्योंकि इसका रूट वसई से है, तो ये ट्रेन जो है जलगांव होके जाएगी, कि जलगांव से फिर नगर और फिर नगर से पूना, इस तरह से मैं पहुँच गया किसी तरीके से। तो मैं सोच रहा था कि हम कितनी भी योजना बनाएं, लेकिन वास्तव में कृष्ण जो चाहते हैं वही होता है, सब कृष्ण के आदेश पर है। तो स्वतंत्रता का जो एक गलत फीलिंग है वही बंधन का कारण है। हम सोचते हैं कि मैं इस तरीके से ये चीज़ करूँगा, ये कंट्रोलिंग मेंटेलिटी जो है ये बंधन का कारण बनता है। तो ब्रह्मा जी, जब आचार्य मध्वाचार्य के अनुयायी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी तो मोहित नहीं हो सकते, लेकिन ब्रह्मा जी भी ये सोचते हैं कि अगर कृष्णा चाहते हैं कि मैं मोहित हो जाऊं तो मोहित होने के लिए भी तैयार है। कृष्णा चाहते हैं शिव जी को मोहिनी मूर्ति दिखाते हैं, और शिव जी कितने धीर व्यक्ति हैं, आपको मालूम है एक बार शिव जी ध्यान लगा के बैठे थे और कामदेव आए उनके ध्यान को डिस्टर्ब करने के लिए, शिव जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए, शिव जी बस, और जब कंदर्प बहुत मस्ती कर रहे थे तो उन्होंने अपनी आँख खोल दी और उसको जला के भस्म कर दिया, अनंग हो गए, वो शरीर से अलग हो गए, शिव जी को कोई मोहित नहीं कर सकता। शिव जी की कहानी प्रभुपाद जी बताते हैं धीर में, एक बार तो शिव जी को डिस्टर्ब करने के लिए पार्वती को भी भेजा गया, देवताओं ने भेजा जिससे अभी संतान हो और लड़ाई में मदद करने में कोई आए, लेकिन शिव जी डिस्टर्ब नहीं हुए, शिव जी धीर है। लेकिन वही शिव जी जब भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि मैंने सुना आपका लेटेस्ट अवतार मोहिनी मूर्ति, मैं देखना चाहता हूँ, आपने असुरों को दिखाया, सबको इच्छा होती है लेटेस्ट शो देखने की भगवान बोले नहीं नहीं ये असुरों के लिए था, नहीं नहीं मैं देखना चाहता हूँ, जस एक बार देखना चाहता हूँ। और आप सबने पढ़ा 8वें स्कंद में कैसे जब मोहिनी मूर्ति आती है गेंद खेलते हुए, और कृष्ण दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं स्त्री बनूँ सबसे सुंदर स्त्री मैं बनूँ, कृष्ण दिखाना चाहते हैं मैं धोखा दूं, सबसे बड़े धोखेबाज भी मैं ही हूँ, मैं चोरी करना है तो मैं ही बेस्ट हूँ, लड़ाई में भागना हो तो भी मैं बेस्ट हूँ, और संन्यास लेना है तो भी मैं बेस्ट हूँ। तो कृष्ण दौड़ने लगते हैं गेंद को लेकर मोहिनी मूर्ति के रूप में, और शिव जी भागने लगते हैं मोहिनी मूर्ति के पीछे। इमेजिन, सब उनके शिष्य बैठे हैं, ऋषि मुनि बैठे हैं और शिव जी भाग रहे हैं पीछे पीछे। लेकिन शिव जी को जब जब आदमी आभास होता है तो शिव जी उससे लज्जित नहीं होते। शिव जी नहीं सोचते हो मेरे डिसाइपल्स क्या सोचेंगे, हमारे गुरु जी क्या कर रहे हैं। शिव जी को पता चलता है, वो सोचते हैं वो कृष्ण कितने महान हैं, कृष्ण मुझे मोहित कर रहे हैं। ऑफकोर्स भक्त को पूरा प्रयास करना चाहिए कि सुदृढ़ रहे, लेकिन अगर बाई चांस पतन हो जाता है भक्त का, तो भक्त जानते हैं कि कृष्ण ईश्वर है, एकल ईश्वर है कृष्ण। तो कृष्ण दिखा रहे हैं इस घटना से, ब्रह्मा जी शिव जी तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन कृष्ण इस घटना से दिखा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं भगवान की माया से परे हूं, कोई नहीं है ऐसा, कोई नहीं है। बस वही व्यक्ति माया से परे है जिसने मायाधीश कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया। इससे अगर एक श्लोक हमें याद हो जाए, देवी ऐशा गुणमयी मोह माया दुरत्य है, मामे वे प्रपद्यंते माया मेतम तरंती, सिर्फ ये पता चल जाए कि मेरी माया कि कृष्ण के आश्रय लेना है। बस कृष्ण बोलते हैं माया को पार करना बड़ा मुश्किल है, जो व्यक्ति कृष्ण का आश्रय ले लेता है नाम के रूप में वो भवसागर पार कर सकता है। नहीं तो हमारी स्थिति ऐसी है जैसे जिसने बता रहा था बम्बई में जिस दिन इतनी बरसात हो रही थी, हमारे कांग्रेगेशन के कुछ भक्त थे जो मंदिर के पास में कार्य करते, सब मंदिर में आके रहे। नारीमन पॉइंट में करीब 20-25 हज़ार लोग ट्रैप्ड हो गए थे, कुछ प्रसाद भी नहीं। मेरे मंदिर से कुछ भक्त लोग खिचड़ी प्रसाद लेकर वहाँ पर फूड फॉर लाइफ कर रहे थे। यहाँ पर लोनावाला में मुझे कोई बता रहा था व्यक्ति की लोग इतने डेस्परेट थे, सब बसेस वहाँ आके रुक गए, लोग डेस्परेट थे कि कुछ तो खाना है, खाने के लिए जो जो वड़ा बेचने वाले होते हैं वो 70 रुपये में एक वड़ा बेच रहे थे, वड़ा पाव। तो व्यक्ति मैं सोच रहा था कि अगर कृष्ण हमको ऐसी स्थिति में डाल दें तो हम क्या कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में सिर्फ नाम ही एकमात्र आश्रय, नाम ही एकमात्र आश्रय। हम हेल्पलेस हैं, कितने सारे कम्युनिकेशन सिस्टम, रेलवे सिस्टम सब ठप पड़ जाते हैं, कृष्ण चाहते हैं तो हमारा आश्रय जो है वो कृष्ण ही है हर स्थिति में। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में सिद्धियों के बारे में बता रहे हैं, यौगिक सिद्धि, अनिमा, महिमा, सब सिद्धियाँ हैं, छोटे से छोटा बन जाना। मैं सोच रहा था ऐसे पानी की स्थिति में हो, किसी व्यक्ति के पास वो सिद्धि हो कि बहुत पानी के ऊपर चलना, ये भी एक सिद्धि है। श्रील प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक योगी थे जो एक्चुअली गाँव के व्यक्ति थे, वो योगा सीखने गए हिमालय में कहीं पर, और 10 साल बाद लौट के आए और सबको बता रहे थे मैं योगिक सिद्धि सीख के आया हूँ, आइए आइए देखिए। और सबने देखा तो सिद्धि क्या थी, वो चलते हुए नदी पार करके चले गए, पैर चलते हुए, और वैसे वापस आ गए बिना किसी नाव के, बिना तैरते हुए। सब लोग प्रशंसा करने लगे, वाह वाह। लेकिन एक छोटा सा लड़का था, वो कहने लगा कि आपकी सिद्धि की कीमत सिर्फ 10 पैसे है, क्योंकि यहाँ पे एक नाविक है जो जाने के 5 पैसे लेता है और आने के 5 पैसे लेता है, वो भी ये कर सकते हैं पारी करना। तो सिद्धि की क्या कीमत है, सिद्धि की क्या कीमत है। एक्चुअली ये सिद्धियाँ जो है ये ऑब्स्टेकल्स हैं भक्ति में। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक दिन महाप्रभु महाप्रकाश लीला में सब भक्तों को बुला रहे थे एक एक करके। उन्होंने भक्तों से कहा जाओ श्रीधर को बुला कर ले आओ। श्रीधर उस समय बहुत दूर रहते थे और ऐसी जगह रहते थे किसी को पता नहीं था। सब भक्तों ने पूछा कि कहाँ पर है श्रीधर, कैसे पता चलेगा। महाप्रभु बोले जाओ जाओ जहां से आपको जोर से आवाज सुनाई पड़े, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जहां पर आपको आवाज दिखाई पड़े सुनाई पड़े आप तुरंत समझ लो श्रीधर वहीं पर है। तो श्रीधर को लेकर आते हैं और महाप्रभु उनको अपने ऐश्वर्य दिखाते हैं, अपना श्याम सुंदर रूप दिखाते हैं। श्रीधर बेहोश हो जाते हैं, सोचने लगते हैं जिनको मैं जो जो मेरे पास आते थे केले के पत्ते लेने के लिए या केले का खोल लेने के लिए, वो स्वयं भगवान है। और भगवान उनसे कहा श्रीधर मांगो क्या वरदान चाहिए। श्रीधर ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्रीधर मांगो मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियां देता हूँ। श्रीधर बोले मुझे नहीं चाहिए। श्रीधर मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मुझे वही चाहिए कि वो जो ब्राह्मण बालक हर वर्ष हर दिन आते थे आप, वो आते रहें हर समय। और श्री प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के पर्पोर्ट में एक और बात बताते हैं जो श्रीधर ने मांगी। श्रीधर मांगते हैं कि मैं आपके दासों का दास बना रहूं। तो सबसे बड़ी सिद्धि वो है, अनिमा लघिमा प्राप्ति ईशिता वशिता, ये सब चीज़ें ऑब्स्टेकल्स हैं भक्ति में, बाधाएं हैं। देखते हैं भक्ति में जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा धन होता है, ज़्यादा योग्यता होती है, कई बार वो अच्छा भी है, सेवा में उपयोग किया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, नहीं हो तो और भी अच्छा है। हालांकि पुंडरीक विद्यानिधि भी भक्त हैं, श्रीधर खोलावेचा भी भक्त हैं, दोनों ही प्योर डिवोटी थे। हम ये नहीं बोल सकते कि श्रीधर खोलावेचा ज़्यादा अच्छे भक्त हैं, लेकिन श्रीधर खोलावेचा की स्थिति ज़्यादा सेफ है, क्योंकि अभिमान का डर नहीं है उसको। कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति के अंदर योग्यता है ही नहीं तो उसका अभिमान का डर नहीं है। इसलिए महारानी कुंती बोलते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर एदमान मदपुमान, जो ऊंचे परिवार में जन्म होना, सुंदर शरीर होना, ये ऑब्स्टेकल्स हैं भक्ति में। अगर आपको कृष्ण नाम लेना है सही में तो आपको समझना चाहिए कि मेरा कोई आश्रय नहीं है, आपको लगना चाहिए। कई बार जब हम बहुत अच्छी तरीके से प्रचार कर रहे हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और हमारे सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारे जब भी अच्छा हो रहा है बाहरी दृष्टि से, लेकिन हम कृष्ण को पुकार नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब हेल्थ फेल होता है, हमारी स्वास्थ्य खराब होने लगता है, हमारी स्मरण शक्ति कार्य नहीं करने लगती, जब रोग ग्रस्त हो जाता है हमारा शरीर, तब उस समय समझ में आता है ये सिर्फ कृष्ण ही है, कृष्ण ही है। आज से करीब एक महीने पहले हमारे इस्कॉन के एक बड़े जनरल श्री भक्ति तीर्थ महाराज ने अपनी देह को त्याग किया, और आपने सुना उनके बारे में, कई भक्तों ने बताया होगा यहाँ पर कि कैसे वो दिव्य चेतना में थे, भीष्मदेव की तरह वो पीड़ा में थे। भीष्मदेव को ऐसे तीरों से मारा गया था, उनके हर हाथ में पैर में सब जगह पर तीर थे, लेकिन वो कृष्ण की स्मृति कर रहे थे, साक्षात कृष्ण उनके सामने थे। ऐसे ही भक्ति तीर्थ महाराज भी, हालांकि कैंसर से ग्रस्त थे, शरीर में बहुत पीड़ा थी, अभी तो आप हम सुनते हैं पीड़ा, लेकिन जब अनुभव होता है तब पता चलता है। जैसे मैंने सुना है कि बिच्छू काटने से बहुत दर्द होता है। रिसेंटली मैं खीरचोर गोपीनाथ मंदिर में गया था और वहाँ पर प्रसाद के बाद हम लोग बैठे थे और एक बिच्छू ने मुझे काटा, वो एक ही बिच्छू था और उसने थोड़ी देर के लिए काटा, लेकिन ऐसा दर्द हुआ कि वो याद करते ही, जब के समय वो याद करो तो नींद खुल जाती है। कृष्ण कृष्ण पुकारने लगा उस समय उनकी दया से। लेकिन मृत्यु के समय 40,000 बिच्छू का एक साथ, 40,000 बिच्छू, और वो अनुभव हमें मृत्यु से पहले होगा ही नहीं, क्योंकि 40,000 बिच्छू एक साथ आएंगे नहीं हो वो अच्छा ही है, लेकिन मृत्यु तो होगी, मृत्यु होगी, क्योंकि भक्ति तीर्थ महाराज पूरे जीवन भर प्रभुपाद की सेवा में लगे थे, डिटरमिंट थे। एक बार वो अभी भक्त को बता रहे थे, उनकी इच्छा थी कि मैं आखिरी दिन राधानाथ महाराज से, उन्होंने कहा कि आप यहीं पे रहो जब तक मैं शरीर त्याग नहीं करता। राधानाथ महाराज 2 महीने तक कहीं गए नहीं, वहीं पर थे उनके पास। तो बता रहे थे एक दिन कि अब मैं और थोड़ा बाकी है, 16 महाराज जप हो गया था, बोल रहे थे और बाकी है। तो पूछा, बोली मैंने संकल्प किया था प्रभुपाद को कि मैं 20 माला करूँगा, कई सालों से पहले मैंने संकल्प किया था और मैं प्रभुपाद की खुशी के लिए कर रहा हूँ। हालांकि दर्द की स्थिति में जप करना मुश्किल होता है, कई बार हमें 103 या 104 टेम्परेचर हो जाता है तो हमारा जप बड़े मुश्किल से पूरा होता है, या कई भक्त अगले दिन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो स्थिति में भी 20 माला जप कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, सफरिंग ब्लिसफुली, क्योंकि वो कृष्ण को याद कर रहे थे। उनसे भक्त पूछ रहे थे दर्द के बारे में, बोले थे दर्द है लेकिन कृष्ण की स्मृति और सारे वैष्णवों का प्रेम मुझे प्राप्त हो रहा है, इसलिए दर्द होते हुए भी मुझे कुछ लगता नहीं है, मैं सहन कर पा रहा हूँ। यह असली सिद्धि है, यौगिक सिद्धि अनिमा लघिमा से ज़्यादा असली सिद्धि है कृष्ण स्मरण की सिद्धि, कृष्ण स्मरण हो पाना। और क्योंकि भक्ति तीर्थ महाराज भगवान की सेवा में लगे थे पूर्ण रूप से, इतने टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से होकर सब कुछ त्याग करके अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद प्रभुपाद की सेवा में पूर्ण रूप से मग्न थे, पूर्ण रूप से। उन्होंने इतने पुस्तकें बांटे थे, लाइब्रेरीज में। और जब प्रभुपाद के पास वो मिलने के लिए आया, बताया कि अमेरिका के अधिकांश जो कॉलेजेस में सब जगह पे प्रभुपाद के पुस्तक रखे गए हैं, तो प्रभुपाद इतने प्रसन्न हुए, उनकी आंखों से आंसू आए और वो श्रील भक्ति तीर्थ महाराज को कहने लगे, योर लाइफ इज परफेक्ट, आपका जीवन परफेक्ट है। लेकिन उनका जीवन समर्पित था भगवान की सेवा में। और भक्ति की ये भक्ति की विधि है, ये डायनामिक है, भक्ति की तरंगें बढ़ती रहती हैं। भक्ति में हर क्षण आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो आप अपने आप पीछे हो जाते। और उस समय के बाद से भक्ति तीर्थ महाराज नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर नए नए तरीके से प्रभुपाद को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहे, और इसीलिए भगवान ने उन पर कृपा की जिससे अंत समय भी उनका स्मरण कर सके। कुछ ब्रजवासी भी वहाँ जा रहे थे, ये भगवान कृष्ण की कृपा से था। बरसाना के कुछ ब्रजवासी वहाँ से जा रहे थे 40 किलोमीटर दूर से, लेकिन उनको जब पता चला तो उनको बुलाया गया और वो उनके लिए राधा कृष्ण के कुछ भजन गाने लगे और वो इतने प्रसन्न हो गए सुनकर कि आंखों से अश्रु आने लगे। नरसिंह चतुर्दशी के दिन भी देह त्याग करने से एक महीने पहले वो कितने उत्साह से कीर्तन गा रहे थे। और ये रियल सिद्धि है कृष्ण को स्मरण करने, नहीं तो बाकी सब सिद्धियां तो बाधाएं हो जाती। अगर किसी के पास सिद्धि हो तो उसको लगता है कि मैं दूसरों से अच्छा हूं, अनिमा लघिमा प्राप्ति, मैं कंट्रोलर हूं, ईश्वर हूं। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, कीट जन्म हो यथा तुवा दास बहिर्मुख ब्रह्मा जन। मेरे को कीड़े का भी जन्म मिल जाए अच्छा है, मुझे आपके भक्त के घर में मिले, भक्त के घर में मिले। कि भक्त के घर में कीड़ा बनना यानी चींटी बनना, कुछ उन भक्तों का महाप्रसाद लेना, भक्तों के चरणों की धूल लेना, सबसे बड़ी अभिलाषा ये है। चैतन्य महाप्रभु जब कोवूर में होते हैं, रामानंद राय से पूछते हैं, संपत्ति में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? रामानंद राय बोलते हैं, राधा कृष्ण प्रेम, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। ध्यान में सबसे बड़ा ध्यान क्या है, किस पर ध्यान करना? ध्यान में सबसे अच्छा तरीका है राधा और कृष्ण के चरणों को याद करना। और उपासना में सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण का नाम पुकारना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है जो बताता है कि कैसे भक्त कोई विभूति भी नहीं चाहते। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाही मागे देह सुख विद्या धन जन। यह प्रभु मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, नाही मेरे को देह सुख नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, नाही मागे स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागे, नहीं करे प्रार्थना को न विभूति र लागे। मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? निज निज गुण दोषे जे जे जन्म पाए, अपने गुण से दोष से वे जो भी जन्म मिले, जन्मे जन्मे तव नाम गुण गाए। मैं हर समय आपका नाम लेता रहूं। अगर हम दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, विपत्ति में हैं और कृष्ण को याद कर रहे हैं तो वह अच्छा है, और हम अच्छी स्थिति में हैं और कृष्ण को भूल रहे हैं तो क्या लाभ है? इसलिए भक्त यही चाहते हैं कि भगवान मुझे शुद्ध भक्ति दो। ये विभूति में इंटरेस्ट नहीं होता। एक बार प्रभुपाद के पास भी ऐसे एक जादूगर आए थे। प्रभुपाद जब ही वृंदावन में थे तो एक जादूगर आया, और आप जानते हैं कि कई बार भक्त भी भोले भाले होते हैं, जादूगर से प्रभावित हो जाते हैं, नहीं जानते कि असली जादूगर कौन है। तो भक्त भी प्रभावित हो गए कि बहुत अच्छा जादूगर है ये, कोई सोने की मुद्राएँ पैदा कर रहा है, कोई चीज़ को कान से डाल रहा है और मुँह से निकाल रहा है, कोई अप्रकट कर रहा है, कोई प्रकट कर रहा है। तो श्री प्रभुपाद के पास लेकर आए और थोड़ी देर के लिए प्रभुपाद भी इसका मजा ले रहे थे, देख रहे थे कि मूर्ख क्या कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर देखने के बाद प्रभुपाद गंभीर हुए, बोले, यू कैन मेक ऑल दिस थिंग डिसअपियर, कैन यू मेक बर्थ एंड डेथ डिसअपियर, क्या आप जन्म मृत्यु को निकाल सकते हो? तो बोला, नहीं वो मैं नहीं जानता। प्रभुपाद जी बोले, मेरे को वो कला मालूम है जिसे जन्म मृत्यु को अप्रकट किया जा सकता है, इसलिए मैं आपसे बड़ा जादूगर हूँ। तो रियल मैजिक है। जैसे कई बार डिवोटीज भी ये भौतिक चीज़ों में थोड़ा आ जाते हैं, या भौतिक में भी हो सकता है उनको पता चल जाए कि ये सिद्धियाँ वगैरह अच्छी नहीं हैं, भौतिक धन अच्छा नहीं है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं देखने के लिए कौन से ग्रह चल रहे हैं, मैं अच्छा ग्रह देखना चाहता हूँ भक्ति के लिए। या कई बार विवाह के लिए, या कई लोग सोचते हैं कि मेरे बिजनेस के लिए क्या ग्रह है, या कई बार लोग आयुर्वेद में घुसते हैं, आयुर्वेद भी वैदिक शास्त्र है, और वैदिक के धीरे 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 कृष्ण को छोड़कर बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं उसमें, कि कैसे स्वास्थ्य अच्छा रहे, कैसे करने से क्या हो। अब ये सब चीज़ें सही है, ये सब चीज़ें यूज़फुल हैं, लेकिन अगर ये सब चीज़ों पे इतना ध्यान हम देते हैं तो हम भूल जाते हैं कि मैं कृष्ण की शरण में हूँ। सारे ग्रह तो कृष्ण के ही हैं, कृष्ण बोलेंगे ये मेरा भक्त है, ग्रह इधर जाओ, मंगल इधर आओ, शनि उधर जाओ, सब आज्ञा पालन करेंगे, ये सब कृष्ण के अधीन है। इसलिए प्रभुपाद को जब किसी ने बोला कि है ना कि आप ये रेखाएं देखना जानते हो, लाइन्स आंखों के हाथों की रेखा, तो प्रभुपाद जी बोले आप ताली बजाओ और गाओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी बोले कि आपकी रेखाएं बदल गई, आप देखो अभी बदल गई, आपको लगेगा सेम है लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बदल गए। जस्ट हैव फेथ इन कृष्णा। भक्ति बहुत सरल चीज़ है, ये कृष्ण की शरण में आ गया। कृष्ण सब प्लैनेट से कंट्रोलर हैं, कृष्ण आयुर्वेद के भी कंट्रोलर हैं। कृष्ण चाहेंगे तो अमृत खाने से व्यक्ति मर जाएगा, और कृष्ण चाहेंगे तो जहर खाने से फिर जिंदा हो जाएगा। यह मैं गलती से नहीं बोल रहा, मैं करेक्ट बोल रहा हूँ। ये बोलना चाह भाग चाहते ना भागवत में कहा गया कि कृष्ण के हाथ में सब कुछ। तो ये जो कला है ये सबसे ऊंची कला है, द आर्ट ऑफ सरेंडर, बिगेस्ट आर्ट। इवन संस्कृत सीखने भी कई डिवोटीज, प्रॉपर डिसाइपल भी संस्कृत सीखने में अडॉप्ट हो जाते हैं और फिर वो भक्ति का मार्ग भूल जाते हैं, क्योंकि भक्ति का मार्ग इतना सरल है। और कोई बोलेगा अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी मालूम है और साथ में मैं हरे कृष्णा मंत्र जप करता हूँ, और मुझे आयुर्वेद मालूम है, और मुझे कुछ टेक्निकल नॉलेज मालूम है कि कैसे कैसे वेदों में न्यूमरोलॉजी कैसे शुरू हुई थी और आर्किटेक्चर क्या होता है, और साथ में तो हाँ ये बहुत इंप्रेसिव है। और कोई कहे कि मुझे सिर्फ हरि नाम मालूम है और भगवान का समर्पण मालूम है, तो वो दिखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी विद्या है। बड़ी विद्या है कि अपने आप को कृष्ण के हाथ में सौंप देना। जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता के हाथ में सौंप देता है कि मेरे को कुछ मालूम नहीं है, मुझे क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं आपकी शरण में आ गया। कृष्ण को बहुत खुशी होती है, इसे तो कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि आप मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आ जाओ मतलब आप भूल जाओ अपने स्वयं के कल्याण, भूल जाओ, यही जान लो कि बस जो भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ वो अच्छा है। ये सबसे बड़ी कला है, और ये कला जो है श्री प्रभुपाद हम सबको सिखा रहे हैं कि बस कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लो। आत्मनिवेदन तुया पदे कोरी हई नो परम सुखी, कृष्ण मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब मैं परम सुखी हो गया। निजब मेरे को अपने खुद के पालन पोषण की चिंता नहीं है, आपके शरण में आ गया, आपकी सेवा में जो भी दुख है वो मेरे लिए परम सुख है। कृष्ण की इच्छा बिना कुछ नहीं होता। एक बार जब श्रीवास को भी डर लग रहा था, कुछ लीला से श्रीवास नारद मुनि है, नारद मुनि को क्या डर लगेगा, श्रीवास को डर लग रहा था कि सामने से मुसलमान सैनिक आएंगे और गिरफ्तार करेंगे। तो श्रीवास नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे अपने डर को दूर करने के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आ गए, बोले श्रीवास देखो देखो जिसकी पूजा कर रहे हो आप वही मैं हूँ। भगवान ने उनको नरसिंह रूप दिखाया, और तब श्रीवास से कहने लगे श्रीवास तुम डर रहे हो, मैं उस मुसलमान राजा के हृदय में हूँ, और अगर मैं उसके हृदय में उसको बोलने की शक्ति देता हूँ, अगर मैं उसको आज्ञा देता हूँ तो वो आज्ञा देगा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाए, अगर मैं आज्ञा नहीं देता तो वो कुछ नहीं कर सकते। और मैं उस राजा को बोलूँगा बुलाओ बुलाओ अपने मुल्ला और काजी को बुलाओ, और उनको बोलो कि हाथियों को और घोड़ों को और जानवरों को अपने कुरान से पढ़ के सुनाए, उनको प्रेम दे, वो नहीं कर पाएंगे। और फिर मैं एक पागल हाथी को पकड़ के ले आऊँगा और दूसरे जानवर को ले आऊँगा और उनको कृष्ण नाम बुलवाऊँगा, वो सब गाने लगेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और श्री चैतन्य महाप्रभु फिर कहते हैं कि देखो श्रीवास इसका सबूत देखो, श्रीवास की 4 साल की भतीजी होती है, इसका नाम होता है नारायणी, तो नारायणी बोलो कृष्ण कृष्ण, और नारायणी कृष्ण कृष्ण बोलकर आंखों में अश्रु प्रवाह करने लगे। तो श्रीवास बोलते हैं भगवान मुझे अभी कोई डर नहीं है, साक्षात काल भी आपके सेवक हैं, मृत्यु भी आपके सेवक है, तो मुझे क्या डर है। भक्त को कोई डर नहीं, हर स्थिति में कृष्ण का स्मरण करते, भगवान से बस यही प्रार्थना करता है कि मैं कभी भी भूलूं नहीं आपको, आपको हमेशा याद करूं, हमेशा आपके दासों का दास बना रहूं, यही सबसे बड़ी सिद्धि है जो मुझे चाहिए बस। इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु कुर्म क्षेत्र में जाते हैं और एक ब्राह्मण से मिलते हैं जिसको शरीर में कुष्ठ रोग होता है, पूरा शरीर गल रहा होता है, उसको गले लगा के उसको अच्छा कर देते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण कहने लगते हैं भगवान से, अब मुझे डर लग रहा है, पहले मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था इसलिए लोग मेरे से दूर भागते थे, कोई मेरे पास नहीं आता था, लेकिन अब मेरा स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया, लोग मेरा सम्मान करेंगे, महाप्रभु प्रिय जन बन गया हूँ मैं, महाप्रभु का प्रिय भक्त बन गया हूँ, इसलिए मुझे अभिमान हो जाएगा। अभिमान कुष्ठ रोग से भी ज़्यादा भयंकर बीमारी है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप चिंता मत करो, आप निरंतर कृष्ण नाम लो, अभिमान नहीं होगा, निरंतर कृष्ण नाम। अगर हम अपराध भी कर रहे हैं, जानबूझ के अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अगर आप अपराध भी कर रहे हैं, गलती से हो रहे हैं, तो अगर आप जप करते रहोगे, कॉन्स्टेंट चैंटिंग रिमूव्स ऑल ऑफेंसेस, सतत जप करने से सारे अपराध दूर हो जाते, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा गाते रहें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर समय हरि नाम ले सकूं। कोई प्रश्न है किसी को? श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।